ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय संसद के शीतकालीन अधिवेशन कल से होने जा रही है शुरू। सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न 6 अध्यादेश पेश करने की है कार्यसूची। सोनाम लोहसार के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसबी के सूचना का हक सुनिश्चित करने और एकता राष्ट्रीय एकता को प्रवर्धन करने वाले विषय वस्तुओं को प्राथमिकता देने पर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने दिया जोर। खोटांग के दिक्तेल से बीमार को लेकर काठमांडू आ रही सुमो ओखलडुंगा के माने भज्यांग में दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 की मौत। और अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में विमान दुर्घटना, विमान में रहे सभी का मौत होने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। संघीय संसद का शीतकालीन अधिवेशन कल माघ 18 गते 1 बजे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र नया बानेश्वर में होने जा रहा है। इस अधिवेशन को विधेयक अधिवेशन के रूप में भी लिया जाता है। संघीय संसद सचिवालय ने दोनों सदनों की संभावित कार्यसूची सार्वजनिक किया है। सचिवालय के प्रवक्ता एक रामगिरी के अनुसार कल होने वाले प्रतिनिधि सभा बैठक में सभामुख द्वारा राष्ट्रपति से प्राप्त अधिवेशन आह्वान, प्रधानमंत्री के कार्यभार तय किए गए और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय से प्राप्त कार्यभार संबंधी पत्र का ब्यौरा पढ़कर सुनाने की कार्यसूची है। इसी तरह सभामुख द्वारा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 के नियम 10 बमोजिम बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, सुशासन प्रबंधन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधन करने के लिए बने अध्यादेश 2081 पेश करेंगे। विपक्षी दलों ने सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को अस्वीकार करने का निर्णय किया है। नेकपा माओवादी केंद्र के संसदीय दल के कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई बैठक में विपक्षी दलों ने यह निर्णय किया। माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे ने बताया कि सरकार ने कानून और प्रक्रिया से बाहर जाकर अध्यादेश लाया है, जिसके कारण विपक्षी दलों ने इसे अस्वीकार करने का फैसला किया है। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में विपक्षी दल जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। प्रमुख सचेतक पांडे ने बताया कि बैठक में इस विषय पर भी चर्चा हुई है। नेकपा माओवादी केंद्र की आज हुई संसदीय दल की बैठक ने संघीय संसद में प्रमुख प्रतिपक्ष की भूमिका सशक्त और प्रभावकारी बनाने का निर्णय किया है। आज सिंह दरबार में हुई माओवादी केंद्र की संसदीय दल की बैठक ने कल से शुरू होने वाले संघीय संसद के दोनों सभाओं को व्यवस्थित और प्रभावकारी बनाने के लिए प्रमुख प्रतिपक्ष की भूमिका को सशक्त बनाने का निर्णय किया। ये जानकारी पार्टी के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे ने दी। बैठक में सदन में जनता की अपेक्षा, जनजीविका के सवालों को प्राथमिकता के साथ उठाने और दल के सदस्यों को अपनी भूमिका प्रभावकारी बनाने के निर्देश दिए गए। ये जानकारी प्रमुख सचेतक पांडे ने दी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि सोनाम लोहसार जैसे पर्व से बृहत राष्ट्रीय एकता को और भी सुदृढ़ करने में मदद मिलता है। सोनाम लोहसार के अवसर पर शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा कि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विविधता युक्त नेपाली समाज में सोनाम लोहसार जैसे त्योहारों से सभी नेपालियों के बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता और बंधुत्व का भावना अभिवृद्धि होता है। सोनाम लोहसार के मौके पर उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने भी शुभकामना देते हुए कहा कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में रहे इस त्योहार को संपूर्ण नेपाली का पहचान और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में मानना चाहिए। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने कहा कि सोनाम लोहसार सभी जात जातियों के समुदाय के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव, भ्रातृत्व और राष्ट्रीय एकता मजबूत बनाने में भूमिका निर्वाह करेगा। इसी बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने तामांग समुदाय के नए वर्ष सोनाम लोहसार के अवसर पर सामाजिक संजाल फेसबुक में डम्फू हाथ में लिए तामांग समुदाय के नारियों के तस्वीर सहित सोनाम लोहसार मनाने वाले बालों में इस त्योहार का शुभकामना व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाकर पड़ोसी देश भारत और चीन सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात बढ़ाने की स्थिति बनाने के लिए उद्योगपतियों और व्यवसायियों से आग्रह किया है। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स द्वारा भिरिकुटी मण्डप में आयोजित 8वें अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर एक्सपो के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए प्रधानमन्त्री ओली ने निर्यात बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और यह जानने पर जोर दिया कि कौन सी चीज कहां बिकती है ताकि उसी के अनुसार व्यापार को बढ़ाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद इसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2026 तक नेपाल को मध्यम आय वाले देश के रूप में उन्नत करने की तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में नीतिगत स्पष्टता लाएगी और इसके लिए कानूनी प्रबंध करेगी। उन्होंने कहा कि सूचना प्रविधि के क्षेत्र के व्यावसायिक विकास के लिए सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश उपयोगी साबित होंगे। नेपाल, भारत, पाकिस्तान सहित अन्य देशों के कुल 125 स्टॉल इस चैम्बर मेले में शामिल है। यह मेला माघ 21 गते तक चलेगा। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा है कि सार्वजनिक सेवा प्रसारण के समाचार और कार्यक्रमों को सामाजिक सद्भाव और सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देकर देश को एकजुट बनाने के हिसाब से होना चाहिए। नेपाल टेलीविजन के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज सिंह दरबार में आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह में संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि नागरिकों के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले विषयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेपाल टेलीविजन और रेडियो नेपाल के सार्वजनिक सेवा प्रसारण के रूपांतरण के बाद प्रसारण सामग्री और कार्यशैली में व्यापक सुधार की आवश्यकता बताते हुए संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि सार्वजनिक सेवा प्रसारण को जनता और राज्य के अधिकतम हित को केंद्र में रखकर आगे बढ़ाया जाएगा। संचार मंत्री गुरुंग ने यह भी कहा कि सार्वजनिक सेवा प्रसारण की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण संस्थानों और साझेदार निकायों के साथ सहयोग और समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी प्रसारण सामग्री का उत्पादन करने के लिए जनशक्ति विकास पर जोर देना चाहिए। सार्वजनिक सेवा प्रसारण के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेंद्र विष्ट ने कहा कि सार्वजनिक सेवा प्रसारण व्यापार या लाभ केंद्रित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जनता की मांगों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ेगा। पीएसबी के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी विष्णुराम न्योपाने ने कहा कि नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी पूरी करने के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण को डिजिटल युग के अनुकूल तकनीक के साथ एक आधिकारिक और जिम्मेदार प्रसारण के रूप में स्थापित किया जाएगा। नेपाल टेलीविजन ने वार्षिक उत्सव समारोह में 20 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से अधिक समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को दीर्घ सेवा पदक से सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमरे ने भौतिक संरचना को मात्र विकास मानने वाले परिपाटी का अंत करते हुए प्राविधिक शिक्षा में निवेश बढ़ाने के लिए स्थानीय सरकार से आग्रह किया है। आज बिरतामोड़ नगरपालिका दूसरे नगर सभा का 6वां अधिवेशन के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक शिक्षा के साथ ही व्यावहारिक और प्राविधिक शिक्षा देश की आवश्यकता है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को समाज रूपांतरण के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आज अध्यक्ष निवास खुमलटार में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने ये बात कही। खोटांग के दिक्तेल से मरीज लेकर काठमांडू आ रही शुमो आज सुबह ओखलढुंगा की माने भज्यांग गांव पालिका वार्ड नंबर 7 टोक्सेल स्थित भंडारे खोला में दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में केपिलास गढ़ी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 बासपानी की 56 वर्षीय माया गुरुंग, उनके बेटे 28 वर्षीय पूजन गुरुंग और दिक्तेल रूपाकोट मजुआगढ़ी नगरपालिका वार्ड नंबर 12 जालपा निवासी 45 वर्षीय तारा गुरुंग की मौत हो गई। ये जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस के मुताबिक सुमो चालक सुनसरी जिला इनरुआ नगरपालिका निवासी 22 वर्षीय अनिल पंडित फिलहाल फरार है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन एयरलाइंस का एक एयर विमान हवा में ही एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। विमान में 60 यात्री और 4 क्रू सदस्य सवार थे। अब आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारी बचाव कार्य में जुटे हैं। वाशिंगटन डीसी के मेयर मुरियल ब्राउजर ने यह सवाल के जवाब में कहा कि जांच की कोई सीमा नहीं तय की गई है, लोगों को तलाशने के बीच बचाव कर्मी जुटे रहेंगे। अमेरिकन एयरलाइंस के मुताबिक विमान में 60 यात्री और 4 क्रू सदस्य सवार थे। बीबीसी के अमेरिकी पार्टनर सीबीएस न्यूज को पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सर्च टीम ने अब तक 18 शव बरामद कर लिए हैं। इस घटना को लेकर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इस मामले की जांच करेंगे। NTSB इस जांच का नेतृत्व करेगा। जैसा ही जानकारी आएगा हम अपडेट देंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय संसद के शीतकालीन अधिवेशन कल से होने जा रही है शुरू। सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न 6 अध्यादेश पेश करने की है कार्यसूची। सोनाम लोसार के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। सार्वजनिक सेवा प्रसारण PSB के सूचना का हक सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय एकता को प्रवर्धन करने वाले विषय वस्तुओं को प्राथमिकता देने पर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने दिया जोर। खोटांग के दिक्ताल से विमान को लेकर काठमांडू आ रही सुमो। ओखलडुंगा के माने भज्यांग में दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 की मौत। और अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में विमान दुर्घटना, विमान में रहे सभी का मौत होने की आशंका। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।